हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह सुनैना का लास्ट एग्जाम है और बाकी सारे दिन की तरह आदित्य आज भी उसके साथ ही कॉलेज गया है। और आज कॉलेज के बाहर कभी इधर उधर खड़े होकर तो कभी अपनी कार में बैठकर वो सुनैना के बाहर आने का वेट कर रहा है। एग्जाम 3 घंटे का है और उसके 3 घंटे नहीं कट रहे, तो उसने सोचा अपना मोबाइल फोन निकालकर उसमें काम से रिलेटेड सारी चीजें चेक कर लेता है। इतना सोचते हुए आदित्य वापस कार के अंदर जाकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, क्योंकि यहां पर वो दोनों अकेले ही कॉलेज आए हैं, ड्राइवर उनके साथ नहीं आया है। आदित्य ने ही यहां तक का ड्राइव किया था, इसलिए वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने अपना मोबाइल फोन निकाला। पिछली रात वो दोनों जब अक्षत नैना के घर से वापस आए थे तो काफी ज्यादा थक गए थे और आदित्य और सुनैना दोनों वापस आते ही सो गए थे, क्योंकि अगली सुबह एग्जाम की वजह से दोनों को ही जल्दी उठना था। इसलिए पिछली रात को अक्षत के घर में जब उसने अपना मोबाइल फोन पॉकेट में रखा था, तब से लेकर अब तक उसने अपना मोबाइल फोन चेक ही नहीं किया। आदित्य ने मोबाइल फोन निकाला तो उसने देखा फिर से एक अननोन नंबर से बहुत सारे उसे लव मैसेज, अलग अलग तरह के कोट और ग्रीटिंग भेजी हुई थी और काफी तरह के लव स्टिकर्स भी। मैसेज बॉक्स ओपन करते ही वो सब कुछ देखकर आदित्य का पूरा मूड खराब हो गया और उसने बहुत ही कसकर अपने हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा, इतनी कसकर कि अगर शायद थोड़ा और प्रेस करता तो मोबाइल स्क्रीन समेत टूट जाता। आदित्य गुस्से में अपने दांत पीसकर स्क्रीन की तरफ देखता हुआ बोला, Who the hell is she? पता नहीं क्या चाहती है, क्यों पीछे पड़ी है? कॉल करूं क्या? नहीं नहीं, कॉल पर मैं बात करूंगा तो हो सकता है बाद में इस बात को वो मेरे अगेंस्ट यूज कर ले। आदित्य ने फिर से उस लड़की का नंबर नदीम और अरविंद को फॉरवर्ड करके उसे फिर से ब्लॉक और उसके सारे मैसेज बिना पढ़े ही डिलीट कर दिए। उसके बाद उसने बाकी के मैसेज चेक किए और लास्ट में उसने रवि का मैसेज चेक किया, क्योंकि उसने कल रात को मैसेज किया था और उसके बाद से काफी सारे मैसेज आ गए थे आदित्य के नंबर पर। रवि का मैसेज खोलते ही उसका दिमाग और भी ज्यादा चकरा गया। वो पहले ही उस लड़की के अजीब तरह के लव मैसेज से परेशान था। रवि के मैसेज पढ़ते हुए आदित्य ने खुद से बात की, व्हाट द हेल, अब ये एक नई मुसीबत, सारी मुसीबतें आकर मेरे ही गले क्यों पड़ती हैं? अब ये लड़की कहां भाग गई रवि के अपार्टमेंट से? एक मिनट, ये वापस भी आ गई तो फिर रवि ने मुझे ऐसा मैसेज क्यों किया? बात करता हूं, मिस कॉल भी लगी है इसकी तो। वो सारे मैसेज देखकर काफी ज्यादा इरिटेट और कंफ्यूज लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही रवि का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से उसके कॉल रिसीव करने का वेट करने लगा। दूसरी तरफ 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मनस्वी अनय के साथ घर वापस आ गई है और उनके क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव्स को इस बारे में पता चल भी गया था और ज्यादातर लोग उसे हॉस्पिटल में विजिट करने भी आए थे, लेकिन मनस्वी को नहीं पसंद कि इस बात को लेकर ज्यादा बातें बने, इसलिए उसने किसी को भी घर आने से मना कर दिया था और अपनी माँ से भी फोन पर बात कर ली थी, क्योंकि वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। घर आने के बाद अनय उसका ध्यान रख रहा है और उसकी सारी चीजों का ख्याल भी, लेकिन वो उसे कुछ भी बात नहीं कर रहा है और मनस्वी जब भी सामने से उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो वहां से चला जाता है या फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर कुछ और करने लगता है और उसे इग्नोर करता है। अनय इस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, लेकिन मनस्वी अब तक इरिटेट हो चुकी है, क्योंकि कल रात ही वो लोग घर वापस आ गए थे और आज सुबह का नाश्ता भी अनय ने उसके साथ नहीं किया और तब से लेकर अब तक अनय ने उसे कोई बात भी नहीं की है। मनस्वी ने अपनी तरफ से सारी कोशिश की और उसे समझ भी आ रहा है कि अनय उसे नाराज है, लेकिन क्यों और किस बात को लेकर ये वो समझ नहीं पा रही है, इसलिए अब उसने सामने से अनय से बात करने की सोची। अनय कमरे के अंदर आया और अलमारी में जाकर अपना कुछ सामान ढूंढने लगा, वो शायद कुछ निकाल रहा था, मनस्वी ने इतना ध्यान नहीं दिया। उसने पीछे से ही अनय को आवाज लगाई, अनय अनय सुनो एक बार प्लीज, कुछ तो बोलो, मेरा मतलब है ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट ये कब तक चलेगा? मनस्वी ने पीछे से ये सब बोला, लेकिन अनय ने उसकी तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और फिर थोड़ी ही देर में उसने एक टी शर्ट निकाली और उसे लेकर हाथ में पकड़ लिया और अलमारी के दरवाजे बंद करने लगा। तभी मनस्वी ने तेज आवाज में उसका नाम लेकर चिल्लाया, अनय। उसके इस तरह से चिल्लाने पर इस बार अनय अपने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है और वो बस थोड़ा सा इरिटेट लग रहा है। अलमारी के दोनों दरवाजे बंद करके वहां से आगे बढ़ते हुए अनय बोला, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो इतनी देर से मेरे नाम की माला जपते हुए? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन। मनस्वी उठकर आगे की तरफ आते हुए बोली, लेकिन क्या? हाँ, चिल्लाना आता है तो फिर चिल्लाओ ना, ऐसे मुंह बंद करके क्यों घूम रहे हो कल से? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहरी हो गई हूँ, किसी की भी आवाज नहीं सुनी मैंने अपने अलावा कल से, और फॉर पॉट सेक स्पीक अप। उसने अनय की चेस्ट पर हाथ रखकर उसे पीछे पुश करते हुए कहा, तो गुस्से में अनय ने एकदम ही कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एकदम ही अपने नजदीकी खींचते हुए दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख लिया। उसके ऐसा करने पर मनस्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और बिना पलके झपकाए हुए वो उसकी तरफ ही देखती हुई अपनी जगह पर एकदम जम गई और उसे समझ नहीं आया वो क्या रिएक्ट करे। अनय ने अपना चेहरा उसके कान के एकदम नजदीक लाकर बोला, नहीं चिल्लाना है मुझे तुम पर और ना ही तुमसे कुछ बात करनी है, तुम एक नंबर की सनकी इंसान, पता नहीं किस बात का क्या मतलब निकाले और फिर से ऐसा कुछ कर बैठो तो। और फिर इतना बोलकर उसने एकदम ही मनस्वी का हाथ छोड़ दिया और उसे वहीं पर छोड़कर वहां से दूर जाने लगा। लेकिन मनस्वी उसकी बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने पीछे से ही अनय का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, तुम नहीं बोला था ना अपना प्यार साबित करने के लिए, तो बस मैंने कर दिया, और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्या मैं तुम्हें दोष दे रही हूं इस बात के लिए? अगर मैं मर भी जाती ना, फिर भी मुझे जरा भी गिल्ट नहीं होता। मनस्वी अभी भी उस चीज को गलत नहीं मानती जो कि उसने किया, और ये बात सुनकर अनय, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था, उसने बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट में अपनी आंखें बंद करके अपना सिर हिलाया और फिर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, यही तो गलती है तुम्हारी, तुम हमेशा ही खुद को सही समझती हो और दूसरों को गलत। देखा, मैंने बस वो बात ऐसे ही बोली थी, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में ऐसा कुछ कर दोगी, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी वो बात नहीं बोलता और ऐसी कोई भी प्यार साबित नहीं होता। तो फिर कैसे साबित होता है? और वहां हॉस्पिटल में तो तुम, वहां पर क्यों आंसू थे तुम्हारी आंखों में मुझे हॉस्पिटल बेड पर देखकर? तुम्हें सच में मेरी फिक्र नहीं थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं अभी भी अपना प्यार साबित नहीं कर पाई हूं ना तुम्हारे लिए? नजर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए मनस्वी ने सारे सवाल किए। उसके ये सवाल सुनकर अनय ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया और बहुत ही ज्यादा बेबसी से बोला, क्या करूं, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? देखो, तुम वैसे तो इतनी ज्यादा स्मार्ट बिजनेस वूमेन हो, लेकिन ये मुझे लेकर ही ऐसी क्यों हो, ऐसा इंपल्सिव बिहेव करती हो और सिर्फ मेरे बोलने पर अपनी जान देने की कोशिश, तुम्हें लगता है ये सब सही है? अगर हम सिर्फ किसी का प्यार पाने के लिए इस हद तक चले जाएं?
अनय की ये बात सुनकर मनस्वी एकदम ही हंसने लगी और उसी तरह से हंसते हुए बोली, हद, तुम हद की बात करते हो अनय, नहीं जानते मेरा प्यार तुम्हारे लिए कब का बेहद हो चुका है, मुझे खुद भी पता नहीं चला, और अब तो तुम रहोगे इस लाइफ में या फिर मुझे ये लाइफ ही नहीं चाहिए। उसकी ऐसी हंसी वहां पर कमरे में गूंज रही है और मनस्वी की आंखों में अनय को इस वक्त कुछ अलग ही नजर आ रहा है, और उसने उसे इस तरह से देखकर अपने गले में फंसा हुआ थूक निकाला और बोला, ये इतना प्यार कब हुआ तुम्हें मुझसे? और तुम ऐसी नहीं हो मनस्वी, क्यों इस तरह से बर्ताव कर रही हो? मुझे डर लग रहा है तुम्हारे इस प्यार से। अनय की ये बात सुनकर मनस्वी की हंसी एकदम ही गायब हो गई, उसकी जगह उसके चेहरे पर अब मायूसी नजर आ रही है, और उसने कहा, ऐसी नहीं हूं मैं, तो फिर कैसी हूं? बताओ, तुम्हें मैं कैसी पसंद आती हूँ? मैं तुम्हारे लिए वैसी ही बन जाऊंगी। मनस्वी ने ये बात बहुत ही गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए कही, और ये बात बोलते हुए उसकी बातों में एक सच्चाई नजर आ रही है जिसे कि अनय ही महसूस कर पा रहा है। मनस्वी की ये बात सुनकर अनय अपनी जगह से आगे आया और उसने अपना एक हाथ मनस्वी के गाल पर रखते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, बस क्या हम एक नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकते कभी? अनय भी अब तक मनस्वी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है, लेकिन उसकी ऐसी साइड देखकर कभी कभी वो घबरा जाता है और सोचने लगता है क्या उसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर पाएगा। अनय की ये बात सुनकर मनस्वी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट और आंखों में उम्मीद की चमक एकदम ही लौट आई और आगे आकर अपने दोनों हाथ अनय की कमर के इर्द गिर्द लपेटती हुई बोली, बिल्कुल रह सकते हैं और मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जो तुम्हें तकलीफ पहुँचाए। प्लीज तुम भी मुझसे बात करना बंद मत करना, जो भी चाहते हो प्लीज वो बस बोल देना, तुम बताओ और क्या करूं मैं? इतना बोलते हुए उसने अपना सिर उठाकर अनय के चेहरे की तरफ देखा। अनय थोड़ा सा सोचते हुए बोला, और क्या बताऊं? हाँ, तुम्हारा वो बॉडीगार्ड, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम उसे काम से हटा दो। तुम्हें पता है उसने मुझे कितना ब्लेम किया था जब तुम हॉस्पिटल में थी? वो बस उसका चलता तो वो मेरे खिलाफ कंप्लेन भी कर देता और अभी ना मैं जेल में होता। मनस्वी ने उससे थोड़ा दूर होते हुए कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखकर पूछा, मेरे कौन से बॉडीगार्ड ने तुमसे बदतमीजी की? बताओ क्या किया उसने, और नाम बताओ मुझे उसका, मैं उसे सिर्फ जब से नहीं निकालूंगी बल्कि मैं उसका वो हाल करूंगी कि। अंकित जिस तरह से अस्पताल में मनस्वी की फिक्र कर रहा था वो सब याद आते ही अनय को उससे थोड़ी जलन हुई, लेकिन फिर भी वो उसका इतना बुरा नहीं चाहता, इसलिए उसने मनस्वी को समझाते हुए कहा, शांत शांत हेडी भीम,
ये हर किसी को सीधा नरक पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी पहले नाम सुन लो, वो तुम्हारा फेवरेट वाला पर्सनल बॉडीगार्ड है, अंकित। मुझे तो लगता है काम से भी नहीं निकालोगे तुम उसे। क्रमशः